नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पांडवों की विजय के बाद युधिष्ठिर को सब प्रकार का ज्ञान हो गया। उसके बाद भगवान ने देखा हमारा अब कोई काम नहीं रहा, तो वे हस्तिनापुर से विदा होते हैं। उनके साथ सात्यकी हैं, अर्जुन वगैरह सब पीछे छूट गए हैं। यहां तक कल बात चली। अब भगवान आगे यात्रा करने लगे। भगवान की यात्रा के समय अनेक प्रकार के अद्भुत शकुन होने लगे। हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल कंकड़ कांटे उड़ाकर अलग कर देती। इधर इंद्र पवित्र और सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते और पृथ्वी को समतल करते। ऐसे चलते चलते, ध्यान से सुनिएगा, भगवान मारवाड़ देश में आ गए, मरुभूमि में। मारवाड़ देश में आ पहुंचे। खूब धूल उड़ती थी, इंद्र वापस धूल को जमा देते थे। मारवाड़ देश में चलते चलते उन्होंने एक बड़े अमित तेजस्वी ऋषि के दर्शन किए। उस ऋषि का नाम उत्तंक था। भगवान रथ से उतरे और ऋषि का बड़ा सम्मान किया, प्रणाम किया। तत्पश्चात उत्तंक मुनि ने भी भगवान का स्वागत सत्कार किया, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। उसके बाद विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, हे कृष्ण, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल कराए? क्या अब उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया? वे तुम्हारे संबंधी और प्रिय हैं, उन वीरों में संधि करा करके ही तो लौट रहे हो ना? खाली याद तो नहीं लौटे ना? क्या अब पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही संसार में सुखपूर्वक जिएंगे ना? कौरवों के इस प्रकार संधि कर लेने पर तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा ना? बोलो कृष्ण, बोलते क्यों नहीं हो? मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि जब तुम प्रयत्न कर लोगे तो कौरवों में और पांडवों में तो मेल हो ही जाएगा। मेरी आशा असफल तो नहीं हुई है ना? भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिर नीचा किया। बड़ी गंभीर वाणी में महर्षि को उत्तर दिया, हे महर्षि, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ी कोशिश की, खूब मनाया, शांति की अनेक प्रकार के लाभ की बात मैंने बताई, अनेक राजाओं के उदाहरण दिए, परंतु मुझे बड़ा खेद है, वे किसी प्रकार संधि के लिए तैयार हुए ही नहीं। इस कारण सब के सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। हे उत्तंक ऋषि, प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से मिटा थोड़ा ही सकता है। आपको तो ये सब बातें मालूम ही है, कौरवों ने मेरी बात को ठुकराया, भीष्म जी की बात को ठुकराया, विदुर जी की सम्मति को ठुकराया, इसलिए वे लड़ करके नष्ट हो गए। पांडवों के पक्ष में भी कौन बचा? केवल ये पांच भाई बचे हैं। उनके भी पुत्र युद्ध में काम आ चुके। धृतराष्ट्र के पुत्रों में एक दासी पुत्र युयुत्सु के सिवा कोई नहीं बचा। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए। ये बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में आए। मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तुम अनंत शक्ति संपन्न हो, क्या तुम उनकी बुद्धि को नहीं बदल सकते थे? तुम चाहते तो वो संधि हो सकती थी, तुमने जान करके नहीं होने दी। अतः मैं आज तुम्हें शाप दूंगा। तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा तुमने नहीं किया, इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें शाप दिए बिना नहीं रह सकता। ओह, कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए, पितामह भीष्म चले गए, पांडवों के कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य चले गए, तुमने सामर्थ्य होते हुए भी उन सबको मरने दिया, हम तुमको शाप देंगे। कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन मेरी पूरी बात तो सुनिए, आप तपस्वी हैं, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूं, उसे सुनने के पश्चात जो आपकी इच्छा हो मुझे शाप दे दीजिएगा। पर याद रखिएगा, कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, आपकी तपस्या का तेज बहुत बढ़ा हुआ है, आपने गुरुजनों की बहुत सेवा की है, बाल्यावस्था से आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इन सब बातों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का नाश नहीं होना चाहिए, इतना आप समझ लीजिए। उत्तम थोड़े से हल्के पड़े। उत्तंग ने कहा, केशव उद्विग्न में जाने में तुम्हें क्या कह गया? तुम अपने कथनानुसार मुझे अध्यात्म तत्व सुनाओ, उसको सुनने के बाद मैं विचार करूंगा कि तुम्हें आशीर्वाद देऊं या तुम्हें शाप देऊं। अल आठ मिटी नहीं है। कृष्ण ने कहा, हे ऋषिवर, हे महातपस्विन, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण रजोगुण सत्वगुण ये सभी मेरे में ही आश्रित हैं। रुद्र और वसु मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इस बात को निश्चित समझिए कि संपूर्ण प्राणी मुझ में है, मैं संपूर्ण प्राणियों में हूं, दैत्यों में भी मैं हूं, दैत्य मुझ में है, यक्ष गंधर्व राक्षस नाग अप्सराएं मुझसे पैदा हुई है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। विद्वान लोग जिसे सत असत व्यक्त अव्यक्त क्षर अक्षर कहते हैं, सब मेरा स्वरूप है। मुने, चारों आश्रम जो चार धर्म को बताने के लिए है, वेदोक्त जितने कर्म हैं मुझसे भिन्न नहीं है। असत सद असत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत, वह भी मुझ सनातन देवादि देव से अलग नहीं है। ओंकार से प्रारंभ होने वाले चारों वेद मेरे में समाये हुए हैं। यज्ञ में यूप सोम चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम होता हवन सामग्री सब मैं ही हूं। अध्वर्यु कल्पक संस्कार किया हुआ हविष्य ये सब मेरे समान स्वरूप वाले हैं। बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से सामगान करके मेरी स्तुति करते हैं। प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ और मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण, सब प्राणियों पर दया करना जो धर्म है, वो मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरे मन से प्रकट हुआ है। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूं और भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोकों में विचरता रहता हूं। हे विप्रवर, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही इंद्र, मैं ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण, संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संहार मुझसे होते हैं, सब युगों का परिवर्तन मुझसे होता है। देव योनि में मैं ही हूं, गंधर्व योनि में मैं हूं, नाग योनियों में मैं हूं। मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसलिए कौरवों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनता पूर्वक उनसे प्रार्थना की है, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो इसके बाद मैंने क्रोध में भरकर बड़े बड़े भय दिखाए, उन्हें डराया भी, धमकाया भी, परंतु अधर्म से तो वो ही डरते हैं जिनके हृदय में धर्म होता है, वे अधर्म से ओतप्रोत थे, इसलिए कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी नहीं हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर अब वे स्वर्ग में गए हैं। आपने जो कुछ पूछा, मैंने आपको सारा प्रसंग सुना दिया। उत्तंक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के कर्ता हैं, मैं आपकी कृपा मानता हूं, मैं प्रसन्न चित्त से आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया। मैंने जो अभी श्राप देने की बात कही थी, वो इसी ज्ञान के लिए, मुझे मालूम था कि आप मुझे ये ज्ञान देंगे कि तपस्या का क्षय मत करो। हमारी तपस्या तो किसी को भी श्राप देने से क्षीण हो सकती है, लेकिन मैंने जो कुछ क्रोध में कहा, केवल आपसे ज्ञान की बात सुनने के लिए कहा। मेरे मन में आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैं ये चाहता हूं जब आपने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, कौरवों की सभा में आपने अपना विश्व रूप दिखाया, वैसा मुझे भी दिखाओ। राजा, हे राजन, वैशंपायन जी के, हे राजन, मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपना सनातन वैष्णव रूप दिखाया, जिसे युद्ध में अर्जुन को दिखाया था। उत्तंक मुनि ने विराट दर्शन किए, क्या भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं, सूर्य के समान वे देहदीप्यमान, अग्नि के समान तेजस्वी, संपूर्ण आकाश को घेर कर खड़े हैं, उसके सब और मुंह दिखाई देते हैं। उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तंक मुनि बड़े आश्चर्य में डूब गए और इस प्रकार कहने लगे, हे विश्वकर्मन, आपको कितनी बार नमस्कार करो उतना ही थोड़ा है, पृथ्वी आपके चरणों में है, आकाश आपके मस्तक पर है, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग ये आपका उदर है, संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई है, हे अच्युत, सारा दृश्य आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप है, आप ही पूर्व में है, आप ही पश्चिम में है, आप ही उत्तर, आप ही दक्षिण, सब कुछ आप है। ऐसा कहते कहते मुनि एकदम भगवनमय हो गए, ध्यान में लीन हो गए। बड़े प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, महर्षि, आप मुझसे अब कोई वरदान मांगो। तब उत्तंक मुनि ने कहा, पुरुषोत्तम, आपके स्वरूप को देख लिया, मेरे लिए मैं क्या मांगू, इससे बड़ी कोई चीज हो तो मांगू, मेरे लिए आप सबसे बड़े हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, ऋषिवर आप कोई विचार मत करो, मेरा दर्शन अमोघ होता है, आप जो मुझसे वरदान मांगो मांग लीजिए। उत्तंक ऋषि ने कहा, प्रभु ये मारवाड़ देश है, यहां पर जल की बहुत कमी रहती है, यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक ही समझते हैं तो मुझे यहां यथेष्ट जल प्राप्त हो जाए, क्योंकि मरुभूमि में जल तो बड़ा दुर्लभ हो गया। भगवान ने अपने तीर्थ को समीट कर उत्तंक मुनि से कहा कि देखो महर्षि, जब जल की आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना, बस तुमको जल ही जल मिल जाएगा। यह कहकर भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े। एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी जोर से प्यास लगी, वे पानी के लिए इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही एक नंग धड़ंग चंडाल दिखाई दिया, उसके शरीर में मैल और कीचड़ जमा हुआ, वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ, कमर में तलवार बांधा हुआ, हाथ में धनुष बाण लिया हुआ, चेहरे से बड़ा डरावना भयंकर और उसके मूत्र से जल की धारा निकलती दिखाई दी। महर्षि को प्यासा जानकर चंडाल ने हंसते हुए कहा, उत्तंक आओ मुझसे पानी पी लो, तुम्हें प्यास से कष्ट पाते हुए देखकर मुझे बड़ी दया आ रही। चंडाल को इस प्रकार देखकर उत्तंक मुनि ने बड़ी घृणा की और धमकाते हुए कहा, हम ऋषि हैं मर जाएंगे, तुम चंडाल होकर और लघुशंका की जगह से तुम पानी पिलाने की बात बोलते हो। फटकारा, और उसी समय भगवान कृष्ण पर क्रोध किया। क्रोध में भरकर उन्होंने जल को ग्रहण नहीं किया। यही वरदान दिया मुझे कृष्ण तूने, ये चंडाल भेजा है, और अपने निश्चय पर अटल रहते हुए चंडाल को खूब डांट लगाई। इनके इनकार करने पर चंडाल कुत्तों के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये देख करके उत्तंक मुनि मन ही मन में बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर समझने लगे, अरे भगवान की माया को मैं समझ नहीं सका, कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया, चंडाल बनकर क्यों आए, आते तो आप शंख चक्र गदा पद्म लेकर आते, चंडाल बनकर के और पेशाब से पानी की बात कह करके मुझे क्यों घृणित किया। इतने में ही भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। तो उत्तंक ने कहा, कृष्ण ये मेरे साथ इतनी मजाक, मैं ब्राह्मण हूं, चंडाल के पेशाब का जल देना ये आपको उचित लगता है। उनकी बात सुनकर जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तंक मुनि को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए कहा, ऋषिवर आपके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा है, बात बात पर आप क्रोध करते हो, मैं चंडाल का रूप बनाकर इसलिए आया कि आप सबके अंदर भगवत बुद्धि क्यों नहीं करते। मैं पहले आया तो मेरे पर क्रोध किया, चंडाल पर क्रोध किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चंडाल आपके अंदर क्रोध रूप में रह रहा है। इस क्रोध रूप चंडाल को आप समझते नहीं हो, इसको आप समझो, इससे घृणा करो। इससे घृणा करते तो आज आप कहीं के कहीं पहुंच जाते। महर्षि जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था, हमने वही किया है, आप समझे नहीं हैं। मैंने आपके लिए इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। मेरी बात सुनकर इंद्र कहने लगे, महाराज उत्तंक मुनि को आप ऐसा मत समझिए, मनुष्य अमर नहीं हो सकता। ये देवताओं का पेय जो अमृत है, ये एक ऋषि को हम नहीं दे सकते। क्यों? मैं आपको बोलता हूं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर वो बहुत क्रोधी है। ये क्रोध जिसके अंदर रहता है, उसको यदि हम स्वर्ग का अमृत पिलाएंगे तो वो अमृत इनके लिए जहर बनेगा। इसलिए आप दूसरा कोई वरदान दीजिए। तो मैंने जोर देकर कहा, न इंद्र, तुमको तो उत्तंक मुनि को अमृत ही देना है। तो कहा, ठीक बात है, मैं तो अमृत देने के लिए चला जाऊंगा, पर वो लेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो इंद्र चंडाल बनकर के आया और तुमने स्वीकार नहीं किया और वो चला गया। ये सब मेरी लीला है। इस प्रकार की शर्त साक्षात इंद्र चंडाल के रूप में उपस्थित हुए, आपको अमृत दे रहे थे, लेकिन आपके तो क्रोध के अंदर ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध हो गया। अच्छा हुआ ये बात तो अब बीत गई, तो मैं आपको तीव्र पिपासा की शांति के लिए, जल की इच्छा पूर्ण करने के लिए अब दूसरा वरदान देता हूं। ब्राह्मण, जब जब आपको पानी की आवश्यकता होगी, तब तब मरुभूमि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घिर आएगी और उन मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उत्तंग मेघ के नाम से इस पृथ्वी के ऊपर भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। मारवाड़ के जो बदल होते हैं बरसाने वाले, उनको उत्तंक मेघ ही बोला करते हैं, प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और अपने क्रोध रूपी चंडाल को मारने के लिए उन्होंने विचार कर लिया और भगवान ने खूब वर्षा कर दी। वर्षा करने के बाद फिर उत्तंक मुनि तृप्त हो गए। यह तो एक कथा हो गई। जन्मेजय ने पूछा कि ये उत्तंक मुनि इतने क्या बड़े तपस्वी हो गए कि जो भगवान कृष्ण के ऊपर भी डांट डपट करने लगे, उनको भी श्राप देने के बल पर उतर आए। ऐसी गुरु भक्ति क्या थी उनकी, क्या तपस्या थी, ये हमको सुनाओ। अब वैशंपायन जी ये प्रसंग कल सुनाएंगे, आज वहां 11:30 बजे उपस्थित होना है, समय हो गया।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्री